श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या सुनने जा रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा है कि आमोस इसराइल को और अन्य पड़ोसी देशों को चेतावनी देता है, और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचता है, तो उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, जिस प्रकार से आपने आमोस नबी के द्वारा इसराइलियों से बातें की, आज आप हम में से हर एक के साथ भी बातचीत करें, हमारे श्रोताओं से बातचीत करें, ताकि हमारा जीवन भी आपकी ओर फिरने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें, उनकी सहायता करें, ताकि आपके वचन के भय में अपने जीवन को बिता सकें। इस समय हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं, या किसी न किसी प्रकार की ऐसी मुसीबत में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, या पापमय जीवन जी रहे हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि वे जान पाए कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनकी जरूरतों को आप पूरा करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आज के इस समय में हम आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आमोस ने इसराइल को चिताया और उसने कहा, हे इसराइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। जी हाँ, आज वह मुझसे और आपसे भी यही बात कहता है। यह संदेश हम सब के लिए भी है। हम सब वहां होंगे। आप वहां उसके समक्ष किस दशा में होंगे? क्या आप जानते हैं कि आप उसके समक्ष अपनी शक्ति में, अपने जीवन और अपने गुणों में खड़े नहीं होंगे? परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो पाप और अपराधों में मरे हुए हैं। उसके समक्ष खड़े होने का एक ही तरीका है कि हम मसीह में हों। रोमियों की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि वह हमारे, अर्थात मसीह, हमारे पापों के लिए मरा और फिर जी उठा कि हम परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहरें। हम मसीह की धार्मिकता पहनकर ही खड़े होंगे। यह हम सब के लिए क्या ही आनंद की बात होगी। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पिछले अध्ययन में हमने जो देखा था, आमोस नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद में, जहां पर हमने इस प्रकार से पढ़ा था, इस कारण हे इसराइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूं। हे इसराइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर उन्हें स्पष्ट नहीं बताता है कि वह क्या करेगा। वह बस इतना ही कहता है, मैं तुमसे ऐसा ही करूंगा, मैं तुम में यह काम करने पर हूं। वह अकस्मात ही कुछ करेगा। और अब हम जानते हैं कि असुर अकस्मात ही आए थे और उन्हें बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया और उसकी ओर नहीं फिरे। परमेश्वर असुरों के दंड से भी आगे की बात कहता है, हे इसराइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अर्थात अश्शूर तुम्हें जान से मार डालेंगे, मरणोपरांत परमेश्वर को लेखा देने के लिए तैयार हो जाओ। मरणोपरांत सबको परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना है, यह आज के लिए भी संदेश है। मेरे एक मित्र को परमेश्वर ने कठोर दंड दिया। वह दंड पाने के बाद कहता है, मेरी चिंता का विषय यह है कि मुझे मरणोपरांत भी परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना है। मैंने उससे कहा कि मरणोपरांत तो मुझे भी उसके सामने खड़ा होना है, और मैं तो सोचकर ही कांप उठता हूं, परंतु मसीह में होने के कारण मुझे साहस होता है, क्योंकि वह मुझे नहीं प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। उसने कहा, बस यही मेरी एक आशा है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यह ग्रामीण प्रचारक आमोस हमें क्या बताएगा कि वह परमेश्वर कौन है। परमेश्वर के वचन का यह एक अत्यधिक पावन कथन है। तो आइए आप मेरे साथ आमोस नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके अंतिम पद अर्थात 13 पद को निकाल लीजिए और आप मेरे साथ पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है, देख पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, आमोस उसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। वह सर्वशक्तिमान सृजनहार है। उसी ने पर्वतों को बनाया और हवा की रचना की। वह सर्वज्ञानी है जो दूर ही से आपके विचारों को जानता है। वह सर्वव्यापी है। वह पृथ्वी के पर्वतों पर विचरण करता है। आप चाहें तो चांद पर चले जाएं, वह वहां भी आपके साथ होगा। आप समुन्दर के तह पर चले जाएं, तो भी वह आपके साथ होगा। आप शायद अपने मित्रों और पड़ोसियों, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी अपनी भलाई से प्रभावित कर पाए होंगे। परंतु भजनकार कहता है, भजन संहिता 90:8 में, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपको जानता है, इसलिए आपको ढोंग रचने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस शायद आपके अपराध को पकड़ ना पाए, परंतु आप परमेश्वर से बच नहीं सकते हैं। मेरे शिक्षक कहते थे, पृथ्वी पर गुप्त पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय होता है। परमेश्वर हमें ही पूर्ण रूप से नहीं जानता, वह तो आमोस के श्रोताओं को भी व्यक्तिगत रीति से, व्यक्तिगत रूप से जानता था। आमोस बड़े ही भावनात्मक रूप से कहता है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आज आप में से कितने लोग अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक कामों को जानता है, उन गुप्त पापों को भी जानता है जिसे आपके माता पिता, आपके मित्र और आपके पड़ोसी नहीं जानते हैं। क्या इन सारी बातों के जानते हुए आप परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो सकते हैं? मेरे प्रियो, हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम अपने पापों से क्षमा पाकर उसके सम्मुख आकर खड़े हो सकें। और यह सब कुछ संभव है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि वही हमारे पापों से हमें मुक्ति और छुटकारा दे सकता है। यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 5 से अध्ययन को जारी रखेंगे। आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 5 का विषय है, इसराइल अपने पापों का दंड पाएगा। ध्यान से सुनिए, इसराइल अपने पापों का दंड पाएगा। जी हां, पिछले अध्याय को पढ़कर ऐसा लग रहा था कि सब समाप्त हो गया है। इसराइल के लिए अब कोई आशा नहीं है। यद्यपि अध्याय 5 में इसराइल के अवश्यम भावी दंड की चर्चा की गई है, परमेश्वर 15 पदों में उनसे आग्रह करता है कि वे पापों से मन फिराकर उसकी खोज करें, उससे ढूंढें, उससे मिलें, जिससे कि परमेश्वर के दंड से वे बच जाएं। दंड आने तक अर्थात अश्शूरों के दासत्व में जाने तक उनके लिए आशा थी कि वे फिर से परमेश्वर के साथ संगति में आ सकें। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद। आमोस 5 उसके 1 पद में लिखा है, हे इसराइल के घराने, इस विलाप के गीत वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, वह कहता है, हे इसराइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। वह विलाप गीत गाता है, अत्यधिक दुखद गीत। अब वह उनके लिए बड़े ही कोमल हृदय से कहता है। आमोस 5 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, इसराइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी, वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं। होशे ने अपनी भविष्यवाणी आरंभ करने से पूर्व उसने अपने घर के अनुभवों की चर्चा की थी। उसने एक वेश्या से विवाह किया और परमेश्वर ने इसराइल से यह कहने के लिए भेजा कि उनका स्वभाव एक वेश्या का सा है, परंतु परमेश्वर तुमसे अब भी प्रेम करता है। आमोस उनसे कहता है, तुम कुमारी कन्या के समान हो, परमेश्वर ने तुम्हें अपनाना चाहा है, अर्थात अपनाया है। विश्वासी भी प्रभु यीशु की दुल्हन है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय और उसके 2 पद में पौलुस भी यही कहता है कि उसने उनकी बात एक ही से लगाई है कि उन्हें पवित्र कुमारी सा प्रस्तुत करे। उसके पास आने पर हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम उसके साथ नए जीवन का आरंभ करते हैं। परंतु आपके जीवन का पिछला समय कैसा रहा? मेरे मित्रों, क्या आपने भी इसराइल के समान काम किए हैं? क्या आपने वेश्यावृत्ति की है? क्या आप अपने प्रेमी से विमुख हो गए हैं, अर्थात परमेश्वर से? क्या आप अपने सांसारिक और दैहिक जीवन के लालसाओं में भटक गए हैं? क्या शैतान आपकी नाक में नकेल डालकर आपको सुअर के समान चला रहा है? आज बहुत विश्वासी इसी दशा में हैं। यह एक दुखद विलाप गीत है। इसराइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर ना उठ सकेगी, वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं। मेरे प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता मसीह है, क्योंकि वही हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और उसी के द्वारा हमें पापों की मुक्ति मिलती है। यदि हम उसी का इनकार करेंगे तो हमें उद्धार कहां से प्राप्त होगा? और यही कारण है कि आमोस इसराइलियों से कहता है कि इसराइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर ना उठ सकेगी। मेरे प्रियो, आज आपके पास भी मौका है कि आप प्रभु यीशु के पास आएं, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और अपने गुनाहों की माफी मांगें, ताकि आप अपने जीवन में उस उद्धार को प्राप्त कर सकें, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। यहां पर आमोस आगे कहता है 5 अध्याय उसके 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस नगर से 1,000 निकलते थे उसमें इसराइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। लिखा है, जिस नगर से 1,000 निकलते थे उसमें इसराइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे। आमोस कहता है, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। देखो कितने लोग घात किए जाएंगे। मेरे प्रियो, जिसमें से 100 निकलते थे उनमें 10 बचे रहेंगे। ये लोग वे हैं जो देश में बचे रहेंगे, उनमें बहुत लोग घात किए जाएंगे। अब देश को उसकी अंतिम पुकार की ओर ले चलें। वह उनसे क्या कहता है? आमोस 5 उसके 4 पद में कहता है, यहोवा इसराइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। ध्यान दीजिए, वह कहता है कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर का आमंत्रण अब भी समाप्त नहीं हुआ था। परमेश्वर अब भी उन्हें मन फिराकर उसके पास आ जाने के लिए पुकार रहा था। यदि वे मन फिराएं तो वे बच जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है, परंतु मैं यह जानता हूं कि यदि आज आप अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर फिरेंगे, प्रभु यीशु की ओर आएंगे, तो निश्चय जान लें कि आप बच जाएंगे। आपको पापों से छुटकारा मिल जाएगी और आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में यूहन्ना कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, वह आपके पापों को क्षमा कर सकता है, आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। परंतु आपको एक काम करना है कि आपको अपने मन फिराकर, अर्थात उन बुराइयों को छोड़कर, सांसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं को छोड़कर प्रभु की ओर फिरना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम उसके सामने आने के लिए तैयार हैं? आगे कहता है आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेर्शबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, बेतेल की खोज में न लगो। बेतेल में सोने के बछड़े की पूजा होती थी। आज बेतेल पहचानना बहुत कठिन है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि वह यहां था। न गिलगाल में प्रवेश करो। यर्दन पार जब यहोशू उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाया था, तब उन्होंने वहां मिलाप वाला तंबू लगाया था और वहीं से यरीहो पर आक्रमण भी किया था। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वे अपनी संतान को बताएं कि उसने उन्हें वह स्थान दिया था, अतः वह एक पावन स्थल बन गया था। परंतु अब वह स्थान मूर्ति पूजा का स्थान हो चुका था। इसलिए हम आगे देखते हैं, न बेर्शबा को जाओ। यह स्थान बेर्शबा यहूदा के नेगेब में था, जहां अब्राहम ने अबीमेलेख से वाचा बांधी थी। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय और न्यायों की पुस्तक 20 अध्याय के 1 पद में दान से बेर्शबा का अर्थ था संपूर्ण इसराइल देश। आमोस के युग में वे बेर्शबा मूर्ति पूजा के लिए जाने जाते थे और ये लोग वहीं जाते थे। तब हम आगे देखते हैं, गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। आमोस ने बेर्शबा का यहां नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बेर्शबा यहूदा में था। बेर्शबा 100 साल बाद बंधुआई में जाएगा। आमोस अपने शब्दों को किसी निश्चितता से काम में ले रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इसराइलियों के लिए बहुत ही स्पष्ट है कि वे किस प्रकार का जीवन जी रहे थे, और फिर भी परमेश्वर उनसे कहता है कि वे अपने मनों को फिराएं, और उन्हें पश्चाताप करने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है, उनको आह्वान दिया जाता है ताकि वे अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाएं। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए और आपके लिए भी बार बार परमेश्वर मौका दे रहा है और वह चाहता है कि हम अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाएं, अपने उन पापों को छोड़कर प्रभु की ओर फिर जाएं और उस सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार अपने जीवन को चला रहे हैं, परंतु परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि हम अपने मनों को फिराकर प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि उसके पास आने में ही हमारे लिए भलाई है और हम उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, आपने अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय भी लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि इस निर्णय का परमेश्वर आदर करेंगे और आपको अपने निकटता में बनाए रखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
राख के बदले सहरा हो, मातम ना हो, खुशियाँ हो, राख के बदले सहरा हो, मातम ना हो, खुशियाँ हो, राख के बदले सहरा हो, मातम ना हो, खुशियाँ हो, राख के बदले सहरा हो, मातम ना हो, खुशियाँ हो। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है।
और मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को छुटकारा, अंधों को रोशनी पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं।
अंधों को बीनाई हो, कुचलों को आबाद करूं, अंधों को बीनाई हो, कुचलों को आबाद करूं, अंधों को बीनाई हो, कुछ लोगों को आबाद करूं, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे...